हाँ सेवाधारी माताएं आगे आ जाओ। चंपा बहन बुलाओ अपने साथियों को पीछे से, आ जाओ भाई आ जाओ। आगे वाली सीट पे बैठ सकते हैं, पहली आ जाओ माता, आ जाओ आगे आ जाओ। अरे आ जाओ ना आप, आगे आ जाओ बैठो। बाबा की मुरली याद है, अव्यक्त मुरली। कौन सी बात सबसे सुंदर थी? संस्कार मिलन की रास, भाई बताएंगे। इंद्र प्रताप बोलो आगे, आगे का शब्द बहुत अच्छा था। नहीं इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे यूज करो। अधिकार को यूज करता है ना मनुष्य। देखो लौकिक में तो अधिकारों के लिए लड़ाई है, कोर्ट है, हमें अधिकार है किस चीज का? सफलता का। तो बाबा कहते हैं इसे यूज करो इस अधिकार को। तो अगर हम कर्म से पहले ये वरदान याद कर लें तो सफलता साथ साथ मिलेगी, पुरुषार्थ में भी सफलता बहुत बड़ी चीज है हम सभी ब्राह्मणों के लिए। पुरुषार्थ में सफलता, पुरुषार्थ में निराशा नहीं, पुरुषार्थ लगातार चले, निरंतर पुरुषार्थ, क्योंकि पुरुषार्थ में मनुष्य को निराशा आती है। आज एक बहन मिल रही मुझे विदेश की, कहा मेरा पुरुषार्थ 2-2.5 मास बहुत अच्छा चलता है, फिर एकदम डाउन, मैंने छोड़ ही दिया। छोड़ने से क्या होगा, वो डाउन होगा ना। तो ये गति है, पुरुषार्थ का भी एक साइकिल है हर मनुष्य के जीवन में। मैंने बहुत सूक्ष्मता से देखा लोगों को, वंडरफुल बातें। सप्ताह में एक बहन बताती, टीचर जैसे गुरुवार आता है मेरा योग लगता ही नहीं सवेरे। देखो गुरुवार सबसे सुंदर दिन है ना हमारे लिए। उस दिन कहा मैं बहुत कोशिश कर ली, सब तरह की युक्तियां अपना ली, लेकिन योग नहीं लगता। जैसे वो दिन बीतेगा फर्स्ट क्लास योग आते ही, बिना किसी पुरुषार्थ के। ये साइकिल है हर मनुष्य के जीवन में। इस मुरली में 2-3 बातें बहुत पावरफुल थी, उन पर हम बहुत ध्यान देंगे। आप इस बात को अंडरलाइन कर लो, अपने चित्त में समा लें। मैं कई बार याद कर चुका हूं मुरली के दिन से अब तक। तुम्हारे पास हर संकल्प को पूरा करने की ताकत है। बाबा हमें हमारी शक्तियों की याद दिलाते हैं, याद करो तुम अपने हर संकल्प को दृढ़ता से पूरा कर सकते हो। इस पर सभी काम करेंगे, इसको अपने चिंतन में लाएं, इस पे काम करना है। हम अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं बहुत उमंग के, बाबा ने भी कहा ना, बाबा भी खुश हो जाता है ऐसे अच्छे संकल्प बच्चे करते हैं, परंतु फिर वो पूरे नहीं होते तो निराश हो जाते हैं। परंतु हमें ये अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ा देना है कि हर संकल्प को पूरा करने की शक्ति मेरे पास है, उसमें दृढ़ता ले आए। एक बहुत अच्छी बात याद रखेंगे, संकल्प के उस बीज को सर्व शक्तियों का पानी दें, बाबा का ही महावाक्य है ये। जिस संकल्प को हम पूरा करना चाहते हैं, उस संकल्प के साथ हम ये संकल्प भी करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो संकल्प को शक्तियों का पानी मिलेगा। मान लो एक छोटा सा उदाहरण लें जो बहुतों के साथ प्रैक्टिकल है। कोई चाहते हैं कि हम सवेरे उठ के बहुत अच्छा योग करें लेकिन नहीं उठ पा रहे हैं, या उठ रहे हैं तो योग में संतुष्टि नहीं हो रही है तो निराशा हो रही है। अभी संकल्प को रात के समय कर लें, सोने के समय मुझे 4 बजे उठना है, योग का आनंद लेना है। केवल उठना है इतना नहीं, इस संकल्प को आप 5 बार या 7 बार कर जाओ अपने अंदर, साथ में ये स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे कल 4 बजे उठना है, योग का संपूर्ण आनंद लेना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे 4 बजे उठना है, योग का संपूर्ण आनंद लेना है। देखना रिजल्ट कितना अच्छा निकलता है। तो हम संकल्पों में शक्तियां भी भरें और ये विश्वास कर लें हर संकल्प को पूरा करने की ताकत हमारे अंदर है। बाबा ने बहुत अच्छा कहा ना, तभी तो 75 साल पूरे कर दिए ना उमंग उत्साह से। 75 साल कम होते हैं क्या? कोई अब किसी को बता दे कि अगले 75 साल तुम्हें और जीना है और ये करना है तो पहले ही हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा ना। साधना करनी है, योग तपस्या, 75 साल बड़ा मुश्किल काम है ये तो। परंतु बाबा देखो अगली दिवाली नहीं आएगी, जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। अपने स्टूडेंट्स में उमंग भरते आए ना। कई लोग सोचते हैं बाबा ने ऐसा क्यों कहा, झूठ बोला क्या, अगली दिवाली नहीं आएगी? झूठ नहीं, एज ए टीचर अपने स्टूडेंट्स को वो तैयार करता है। अगर वो पहले ही बता देता इतना समय है तो सभी अलबेले हो जाते ना। मनुष्य के मन की गति को जानते हुए उसने ये भिन्न भिन्न युक्तियां रची। देखो पिछले साल भी हर मुरली में वो बात याद दिलाई और इस साल पहली मुरली में याद दिलाई, जो कुछ होना है वो अचानक होना है। जहाँ भी जो कुछ होगा, अब हम यहाँ बैठे हैं, अभी अर्थक्वेक हो जाए, किसी को कोई संकल्प नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, बड़ा भूकंप आ जाए, बड़ी सुनामी आ जाए, रात को हम सोए हों किसी को ख्याल ही नहीं, तो सब कुछ तो अचानक ही हो रहा है ना ड्रामा में। तो हम संकल्पों को इस तरह सफल करेंगे और आगे चलें। एक बहुत सुंदर बात बाबा ने व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की जो विशेष बात कही, इन पर हम सभी को काम करना है। ये बात आज थोड़ा ही कही है, ये तो जब से हम ज्ञान में आ गए तब से ही हमें मिल गई ना, व्यर्थ संकल्प नहीं। अब बाबा ने देखा होगा कुछ उसकी महान आत्माओं के अंदर व्यर्थ का फोर्स ज्यादा चल रहा है, व्यर्थ संकल्पों से शक्तियां नष्ट होती हैं। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, ये बात रोज हमें अपने को याद दिलानी है। क्रिएटिव एनर्जी, बहनों ने समझा, रचना करने की शक्ति। तो हम जो कुछ सोचते हैं, अगर हम व्यर्थ सोचते हैं तो उसकी बैड एनर्जी हमारे ब्रेन में पहले पहुंचती है, पूरे शरीर में फैल जाती है, फिर बाहर फैलती है, नुकसान होता है, आत्मा की शक्तियां भी क्षीण होती हैं। योग का सब्जेक्ट तो दूसरी बात हो गई, योग लगेगा नहीं, खुशी नहीं रहेगी, जीवन में दिव्यता नहीं रहेगी। तो बाबा ने इसके लिए एक और बहुत सुंदर बात कही, उसको भी हम सभी को अंडरलाइन करके अपनी साधनाओं में लाना है। मन की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर तुम्हारे पास है। सोचो देखो, बाबा अपनी सेना को सिखा रहा है, तुम जिसे हार मान रहे हो उसका रिमोट कंट्रोल तो तुम्हारे पास है, तुमने गलत बटन कैसे दबा दिया? रिमोट कंट्रोल का बटन गलत दब गया ना। बहुत सुंदर बात है, इसको भी रियलाइज करना है डीपली कि मन को कंट्रोल करने की पावर मेरे पास है। ट्रेनिंग दें अपने को, पढ़ाएंगे हम सब अपने को। मैंने भी शुरू किया, बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात। मन मेरा है, मैं मन की मालिक हूँ, बाबा ने पिछले साल भी कई बार कहा। लेकिन ये शब्द बहुत अच्छे हैं, मन को कंट्रोल करने की पावर मेरे पास है। अटेंशन देंगे इस बात पर सभी। और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रेरक महावाक्य आया है इस मुरली में, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करके सदा श्रेष्ठ संकल्पों की कमाल देखो। प्रेरणा है बहुत सुंदर, हमारा एक एक श्रेष्ठ संकल्प कमाल करेगा, संकल्प सिद्ध होंगे, हम आत्माओं का आह्वान कर सकेंगे, हम संकल्पों से ही वो काम सरल कर सकेंगे जो हमें असंभव भी लगते हैं। कठिन तो छोड़ो, जीने लगता ये होगा ही नहीं, वो सहज होने लगेंगे। तो हम इस बात पे विशेष ध्यान दें, हमारे श्रेष्ठ संकल्प कमाल करेंगे यदि व्यर्थ से हम मुक्त होते चलें। मुक्ति का गेट कब खोल सकेंगे हम? हमारी संपूर्णता मुक्ति का गेट खोलेगी। बाबा ने संपन्नता भी बोला, संपन्नता का अर्थ होता है सभी खजानों में भरपूर, जो हमारे खजाने हैं, ज्ञान का, समय का, संकल्पों का, खुशी का, सब गुणों का, शक्तियों का, इन खजानों में भरपूर होना माना संपन्न। और संपन्न होते होते आ जाती है संपूर्णता। तो हम संकल्प करें कि हमें स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करना है। ऐसा नहीं मुरली सुन ली, हमें लगा भी बहुत अच्छा, सचमुच व्यर्थ से मुक्त हमें होना चाहिए, व्यर्थ तो अच्छा है ही नहीं, किसी को भी व्यर्थ प्रिय नहीं है। पर व्यर्थ के आत्मा अधीन हो जाती है। दूसरी बात थी व्यर्थ संकल्पों के साथ क्या नहीं वेस्ट करना है, समय। क्या चाहिए इसके लिए? नहीं, अटेंशन से पहले, अटेंशन की भी जरूरत न पड़े, किसी विशेष लक्ष्य को पाने की डेट फिक्स। बाबा ने बहुत पूछा ना, एडवांस पार्टी पूछ रही है कब गेट खोलेंगे, डेट फिक्स करो। बाबा ने देखो क्या कहा, दो जवाब। जवाब है, भगवान अपने बच्चों से पूछ रहा है जवाब दो, एडवांस पार्टी को गेट कब खोलेंगे, जवाब है। तो अगर हम किसी विशेष पुरुषार्थ की लगन में लग जाएं, तो समय वेस्ट नहीं होगा। बहुत लोग जो समय वेस्ट करते हैं, घंटों घंटों बैठ के बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं ये उन्हें भी नहीं पता, बात कर रहे हैं वो इसलिए कि उनके पास कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता। हम कुछ लक्ष्य निश्चित करें, डेट फिक्स करना, जिसके लिए बाबा कह रहे थे हाथ उठाओ कब करेंगे। बोला किसी किसी ने ये दिवाली, इसने अगली दिवाली, निर्वैर भाई ने कहा अब नहीं तो कभी नहीं। लेकिन कहने से तो काम नहीं चला, कितनी दिवालियां बीत गई। हाँ नहीं, बाबा को मालूम हो या ना हो उससे कुछ होगा नहीं, पुरुषार्थी को ये काम खुद करना होता है, बाबा के कहने से ये काम नहीं होगा। इसलिए वो कहता नहीं ना, वो तो कहेगा छह मास में संपूर्ण बन जाओ, लेकिन हम में से कितने बनेंगे, शायद एक भी न बने। क्योंकि संपूर्णता एक लंबी यात्रा है, संपूर्णता ऐसी तो नहीं है ना कि अभी अभी बन जाएं, हो गए भाई हम संपूर्ण, चलो बाबा, ऐसा तो नहीं है ना, खुश करने वाली बात तो नहीं है, एक लंबी यात्रा है संपूर्णता की। बहुत अच्छी साधनाओं की जरूरत है संपूर्णता के लिए। हमें अपनी कमियों पर भी अटेंशन रहे और अपनी महानताओं पर भी। पुरुषार्थ में ये गड़बड़ होती है भूतों के साथ कि वो अपनी कमियों की लिस्ट बना लेते हैं कि मुझे ये कमी ठीक करनी, ये कमी, और वो होती नहीं तो क्या होता है? बहुत निराशा, दिल से कष्ट। हमें कमियों की लिस्ट तो भले ही हमारे पास हो, लेकिन उस पर हम फोकस न करें, फोकस करें श्रेष्ठ पुरुषार्थ पर, श्रेष्ठ स्वमान पर, अच्छे योग अभ्यास पर, ऐश्वर्य होने पर, उन पे हम फोकस करेंगे तो बहुत चीजें ठीक हो जाएंगी। तो बाबा ने जो हम सबको कहा, अब इस मुरली में दूसरी पॉइंट कौन सी थी, पहले उस पे भी थोड़ी नजर डाल लें। प्रभु परिवार है ना, हमारे परिवार सबसे अच्छा है। माताएं क्या समझती हैं, हमारा परिवार सबसे अच्छा है या ये अच्छी नहीं, ये तो मुझे तंग करती है, सोने नहीं देती, खराटे बहुत लेती है, मुझे सोने ही नहीं दिया सारी रात, ये क्या कैसे हो गए, मुश्किल हो गई। किसी को खराटे बहुत आते हैं ना तो पड़ोसी बड़े तंग होते हैं, एक हो रहे थे ऐसे ही तंग, मुझे कहा बहुत मुश्किल हो गई, रात को भी नहीं सो पाया, 8 दिन में भी नहीं। तो परिवार हमारा बहुत सुंदर है ना? है भाई, क्या समझते हैं किन का परिवार है ये? अच्छा अच्छा बोल रहे हैं आप, देवताओं का परिवार है। जो देवकुल की आत्माएं थी वो बैठी हैं, संसार की चुनी हुई आत्माओं का परिवार है। बाबा ने हमें कैसे चुना, देखो, किसी एक फैक्ट्री में किसी बड़े ऑफिसर का चुनाव करना हो, मान लो उसके MD को चुनना है, कई सारे ऑफिसर्स उसकी रेस में हैं, मान लो 100 हैं, पहले 100 में से वो 10 को चुनेंगे, भाई ये 10 योग्य हैं, 10 में से 5, फिर 5 में से 2, 2 में से 1। बाबा ने हम सबको कितनों में से चुना? पहले उसने करोड़ों को देखा, एक शहर पे दृष्टि डाली, भाई उसमें 10 लाख लोग रहते हैं, फिर उनमें से देखा अच्छी अच्छी आत्माएं कौन सी हैं, थोड़ी 1 लाख निकल आई, फिर और चुनाव किया, चमक किनकी थोड़ी थोड़ी अच्छी है, तो 500 निकल आई, 500 आत्माएं अच्छी चमक रही हैं, फिर और ध्यान से देखा कि असली चमक वाले तो 50 ही हैं, उनकी चमक ने बाबा को भी अट्रैक्ट किया, ये है मेरे काम के बच्चे। उनमें से भी कोई श्रेष्ठ पुरुषार्थी, कोई ढीला पुरुषार्थी। हम सब कैसे पुरुषार्थी? ढीले कौन? अपने को समझना भी नहीं है ढीला पुरुषार्थी। ढीला समझेंगे तो ढीले ही हो जाएंगे। संकल्प कर ले मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, तो श्रेष्ठ योगी बनते जाएंगे। बार बार कहेंगे तेरा योग नहीं लगता, मेरा तो योग ही नहीं लगता, सवेरे उठ के क्या करेंगे, योग तो लगता ही नहीं, तो रोज रोज सोचने से क्या होगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं श्रेष्ठ योगी हूँ। प्रभु परिवार के लिए बाबा ने कौन सी 2-3 बातें कही? संस्कार मिलन की रास करो, और आगे कैसी दृष्टि, फीलिंग्स कैसी हो, शुभ कामना, शुभ भावना, कल्याण की भावना, हाँ और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक मत भी हो, एक दूसरे को सहयोग देने की भावना भी हो, आगे बढ़ाने की भावना भी हो, ये शुभ कामनाओं में आ जाता है। परिवार में किस बात की चेकिंग करें हम, जिसको बाबा ने भी पूछा, हो सकता है मुश्किल काम है थोड़ा सा, कौन सा, कोई हमसे नाराज तो नहीं है, कोई हमसे भारी तो नहीं है, एक दो से हल्के हैं, सोचो अब आप सब चेक कर ले, कोई हमसे भारी है। एक बार बाबा के सामने प्रश्न आया था, व्यक्त बाबा के, दादी ने पूछा, बड़ी दादी ने, कि बाबा हम तो बहुत संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं सबको, पर कोई कोई तो होते ही नहीं। ऐसे भी तो है ना कई लोग, उन्होंने भी दृढ़ संकल्प किया हुआ है कि हमें संतुष्ट होना नहीं है। तो बाबा ने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया था, क्योंकि ये बात भी कईयों को बहुत निराश करती है कि हम अपनी ओर से अच्छा अच्छा कर रहे हैं, ये तो खुश होते ही नहीं कभी। बाबा ने कहा, तुम अपनी ओर से सबको संतुष्ट करो, लेकिन 5% की छुट्टी है बाबा की। 95% संतुष्ट होने चाहिए, 5% की मार्जिन रहती है कि कोई नहीं होते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उनके अपने संस्कार। तो हम क्या करें जो कोई हमसे भारी ना हो, और हो जाए तो क्या करें? कोई हमसे भारी ना हो, बहुत सीधा सा सिद्धांत हम याद रखेंगे, जितने हल्के सरल चित्त हम होंगे, हमारे संपर्क संबंध की आत्माएं भी उतनी ही हल्की रहेंगी। देखो, कोई व्यक्ति होता है, कोई बड़ा व्यक्ति, उसके पास जाते ही लोग डरते हैं। अगर पता लग जाए कि वो बुला रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा? एकदम भारी हो जाते हैं कि पता नहीं क्या कहेंगे, ऐसा ना हो जाए, डांट ना दें, कुछ शिक्षा ना दे दें भारी, कहीं मेरी कोई शिकायत तो नहीं हो गई है, अनेक संकल्प चलेंगे। दूसरा है कि किसी ने बुलाया, बहुत हल्के खुश हो गए और खुशी खुशी जा रहे हैं, वो डांट भी देते हैं तो भी आनंद महसूस हो रहा है, भारी नहीं हो रहे हैं। दादी की ये बात हमने देखी थी कि दादी में बहुत बड़ी क्वालिटी थी, कुछ कहती भी थी लेकिन दूसरों को भारी नहीं होने देती थी। बहुत ऐसे केसेस देखे, हल्के रहते थे लोग, हम हल्के तो दूसरे भी हल्के, हम खुश तो दूसरों को भी खुश करेंगे, हम जितने स्वयं से संतुष्ट होंगे, दूसरों को संतुष्ट करने की कला स्वतः ही हमारे पास रहेगी, ऑटोमेटिक है। जो स्वयं संतुष्ट हैं, उनके पास वो कला रहती है कि वो चाहे अपने बोल से, चाहे दूसरे की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, कामनाएं हैं, उनको पूरा करके, वो पूरी नहीं की जा सकती तो अपनी भावनाओं से, दुआओं से, अच्छे वाइब्रेशन से दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो इस बात पर भी सभी बहुत ध्यान देंगे। अब हम थोड़ा सा विचार करें, प्रैक्टिकल, व्यर्थ से हमें मुक्त होना है। इसमें एक चीज पर ध्यान देंगे, घड़ी आगे पीछे जा रही है, एक चीज पर विशेष ध्यान देंगे। मैंने पिछली बार एक छोटी सी एक माता की कहानी सुनाई थी क्लास में, अब एक कहानी और जुड़ गई उसमें। अनुमान से बहुत व्यर्थ संकल्प चलाता है मनुष्य। पिछली कहानी मैंने सुनाई थी, फिर सुन ले, क्योंकि अनुमान भी बहुत बड़ी बीमारी है। तो एक माता छोटी आयु की एक संकल्प से बहुत परेशान हो गई जीवन में, उसके दो छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसको एक संकल्प तेज उठने लगा कि मेरे दोनों बच्चों का कोई अपहरण न कर ले। उसने मुझे फोन किया, कहा मेरा हाल बहुत बुरा हो गया है, मैं गेट पर ही देखती रहती हूँ, गली में देखती हूँ, बार बार जाके के आ रहे हैं, आएंगे तो टाइम पे ना, शाम को 3 बजे आना, 4 बजे आना, वो 2-1 बजे कैसे आ जाएंगे, उसे पता है। फिर भी कहा, मैं बार बार, खुद बता रही, मैं बार बार देखती हूँ आ गए, और आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन सफल हो गया। कहा, मैं सारा दिन परेशान रहती हूँ, इन दोनों का कोई अपहरण न कर ले। मैंने उससे पूछा, तुम्हें ये किसने बता दिया बिना मतलब का संकल्प? कहा, मैंने अखबार में पढ़ लिया था, एक बच्चे का अपहरण हो गया था, तब से मुझे बहुत संकल्प चलता है। इतने संकल्प चल रहे थे उसको कि उसके जीवन का सुख नष्ट हो गया था पूरी तरह। मैंने उसे एक सिंपल बात बताई। दूसरी ये, अभी अभी मैं गया कहीं उड़ीसा में, तो एक पब्लिक प्रोग्राम था, एक सर्जन बहन आई मेरे पास कि मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम है। उसने तो कहा एक अच्छी बड़ी प्रॉब्लम है पर है छोटी सी। कहा आजकल युवक लोग बाइक बहुत तेज चलाते हैं तो एक्सीडेंट होते रहते हैं, मेरे पास आते रहते हैं। जैसे ही कोई युवक एक्सीडेंट होके आएगा, रोज आ जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दो, तो मुझे संकल्प चलता है मेरा लड़का भी पूना में पढ़ता है, वो भी बाइक तेज चलाता होगा, उसको भी कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो। कहा मेरा पति भी दूसरी जगह कहीं सर्विस में, वो भी अच्छी पोस्ट पर, उसके बारे में भी संकल्प आता ऐसा ही। और कहा मैं उनको ऑपरेशन करती हूँ, उनको ठीक करती हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि अपसेट रहती है, कोई खुशी नहीं, कोई जीवन में शांति नहीं। फिर उसको तुरंत फोन करती हूँ, तुम ठीक तो हो? जब वो कहेगा हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तब शांति मिलती है। सोचें सभी। चलो एक मिनट का गीत बजता है बाबा से दृढ़ संकल्प कर ले व्यर्थ से मुक्त होने का। तो हम संकल्प करेंगे अब, मुझे व्यर्थ के फोर्स को समाप्त करना है, अपने से अपने लिए एक शुभ भावना, इसमें नुकसान ही नुकसान है, इसलिए मुझे इसको समाप्त करना है। कम से कम पांच चीजें आज अपने पास रख लें इस मुरली से। पहली, अनुमान नहीं। अनुमान से बहुत संकल्प चलते हैं। बाबा इसके लिए दो शब्द और बोलते थे, अहम और बहम। अनुमान अहम अलग, पर हम अनुमान से बचेंगे, ये अपने को खुद बचाना है। कईयों को आदत होती है ज्यादा अनुमान लगाने की, कोई दो बात भी कर रहे होंगे तो तुरंत अनुमान लगेंगे, मेरे बारे में ही कर रहे होंगे, चाहे उनको लेना देना कुछ ना हो, तो संकल्प चालू हो गया, मेरे बात देखा ये मेरी ग्लानी कर रहे होंगे, अरे भाई उनको क्या पड़ी तुम्हारी ग्लानी करने की। अनुमान एक चीज। दूसरा, एक और छोटी सी बहुत प्रैक्टिकल बात होती है, जो काम हमें करने हैं, कल परसों कुछ चीज लेनी है, उसके बारे में बहुत सोचते रहना, ये भी एक आदत होती है आत्मा को। इसके लिए भी हम अपने को थोड़ा सा हल्का करें। ड्रामा की पॉइंट्स, ज्ञान की कुछ अच्छी पॉइंट्स हम अपने पास रखें, जिनके बल से हम अपने संकल्पों को शांत करते चलें। एक दिन की साधना नहीं है, लंबा काल लगता है आत्मा को इस साधना में। मन भरपूर होता चले, सब जानते हैं मन खाली है तो बहुत कुछ आता है उसमें। मन श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर होता चले, मन शक्तियों से भरपूर होता चले, और मन आनंद से भरपूर होता चले। तीन चीजों पर हम ध्यान देंगे। आनंदित जब हमारा मन हो जाता है, खुशी से भी थोड़ी ऊपर की स्थिति है आनंद, जिसमें खुशी नशा सब समाया होता है। मन जब आनंदित हो जाता है तो उसका भटकना स्वतः ही शांत हो जाता है। मन को हम श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर रखेंगे तो श्रेष्ठ संकल्पों का बल व्यर्थ को आने नहीं देगा। इन चीजों पे हमें ध्यान देना है। बाबा ने भी कहा मन को इतना बिजी कर दो कि वो व्यर्थ की ओर जाए ही नहीं। किसमें बिजी? कई लोग कामकाज में बिजी कर देते हैं, कंप्यूटर पे काम करना है, हम तो 10 घंटे बहुत बिजी रहते हैं। आईटी वाले कहते हैं 10 घंटे हमें तो फुर्सत ही नहीं होती कुछ सोचने की, ये भी बिजी लाइफ है। कोई टीवी देखने में अपने को बिजी कर दे के हमने तो बिजी कर दिया, चलेगा? इन सब से आत्मा की शक्तियां नष्ट होके कमजोर होने लगेगा मन। हमें बिजी करना है श्रेष्ठ संकल्पों में, श्रेष्ठ स्वमान में, योग के भिन्न भिन्न अभ्यासों में। सबसे अच्छी चीज है जो बाबा हमेशा ही सुनाते हैं और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के लिए सबसे सुंदर विधि है कि अपनी मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ, प्रोग्राम बनाओ, हमें ये अभ्यास करने हैं। अमृत वेला भी अगर आपको पौना घंटा योग करना है तो पौने घंटे की प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसे ही आके लाल लाइट में बैठ गए, बाबा को याद करना है, उससे योग का सुख नहीं मिलेगा, मन कभी इधर जाएगा, न भी जाए तो योग हल्का होगा। आप एक प्लानिंग कर लें, मुझे पहले पांच स्वरूपों का अभ्यास करना है, मुझे अपने को इस स्वमान में स्थित कर देना है। मैंने पिछली बार भी आप सबको एक बात कही थी जो तब थे, फिर से सुने आप, वो बहुत अच्छी बात है। हम बाबा का आह्वान करें और देखें बाप दादा दोनों धीरे धीरे उतर के हमारे सामने आ गए, बाबा से दृष्टि लें। बहुत अच्छा बाबा का ये महावाक्य था टीचर्स के साथ, सवेरे रोज वतन में बाबा से दृष्टि लो, और बहुत गुह्य बात है दूसरी, संसार को दृष्टि दो। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। महानात्माएं अगर संसार को दृष्टि देंगे ना तो वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो सवेरे चाहे हम चलें वतन में, चाहे बाबा को बुलाएं और महसूस करें बाबा दृष्टि दे रहे हैं और उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। बहुत सुंदर अनुभूति होंगी। इसको आप अपनी नेचर बना लें, चाहे उठते ही करें फीलिंग, चाहे योग में बैठते समय, बस बाबा का हाथ सिर पर आ गया है। उसके हाथ से शक्तियां भी निकलेंगी, वरदान भी मिलेंगे। तो इस तरह हम अपने पुरुषार्थ की कुछ प्लानिंग करें। हम श्रेष्ठ संकल्पों की भी प्लानिंग कर सकते हैं। दो चार हम अच्छे संकल्प रख लें जिनको हम सारे दिन में याद करते रहे, तो एक एक संकल्प की पावर बहुत देर तक हमें व्यर्थ से मुक्त रखेगी। एक छोटा सा उदाहरण, बाबा मुरली में एक बात कहते हैं, मुझे बात बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं यहाँ भी इसको सुनाता रहता हूँ, कि तुम सदैव मुख से ये कहो कि सब कुछ अच्छा होगा। आगे की लाइन बहुत सुंदर है, तो अगर कुछ ऐसा वैसा होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है। हमारे अंदर ये पावर है कि अगर हमारे संकल्पों में और बोल में ये पॉजिटिविटी है, नहीं ये अच्छा होगा, तो हमारे अंदर क्रिएट करने की पावर है, हम खराब को भी अच्छा बना देंगे। इस पे सभी बहुत ध्यान दें। तो ये एक संकल्प हो गया ना, ऐसा संकल्प हमें व्यर्थ से मुक्त करेगा, नहीं तो सोचते रहेंगे पता नहीं क्या होगा, ये न हो जाए, वो न हो जाए, ऐसे न हो जाए, गड़बड़ न हो जाए, होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही होगा, ये बिल्कुल अच्छा ठीक हो जाएगा। तो हमारे संकल्पों में क्रिएट करने की पावर है। सभी अपनी शक्तियों को, अपनी महानताओं को गहराई से रियलाइज करके स्वीकार करते चलें। जैसे इस मुरली में था, तुम्हारे पास हर संकल्प को पूर्ण करने की ताकत है। लगी ये बात अच्छी? मुझे बहुत अच्छी लगी, कितनी गहरी बात बाबा ने कही है, याद दिला रहा है। तुम परेशान हो रहे हो, तुम जानते ही नहीं अपनी ताकत को, तुम में तो हर संकल्प को पूर्ण करने की ताकत है। बाबा को आश्चर्य लगता होगा ना कि इनके पास सब कुछ है, इन्हें पता ही नहीं, तो वो हमें रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे पास ये ताकत है, संकल्प करो अच्छे अच्छे। श्रेष्ठ संकल्प करना भी श्रेष्ठ बात है, वो पूरे हो जाए वो तो सुंदर बात हो गई, पर हम व्यर्थ से बचने के लिए श्रेष्ठ संकल्प अवश्य करें। ड्रामा की कुछ बात सभी पक्की कर ले अपने जीवन में, सब चुन ले ड्रामा से। मैंने कई माताओं को देखा, मैं देखता हूँ, मुझे मिलती रहती है ऐसी माताएं, बिल्कुल भोली माताएं, पढ़ी लिखी नहीं, साहूकार घर की नहीं, बिल्कुल आप समझे एकदम भोली, और उनको नशा रहता है, बाबा हमारे साथ है, बड़े निश्चिंत रहते हैं, उनके चेहरे से दिखता है कि उनके जीवन में रौनक है, इस एक संकल्प से बाबा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बाबा हमारे साथ है। तो एक संकल्प अनेक व्यर्थ को समाप्त करेगा, ड्रामा कल्याणकारी है, बहुत अच्छी बात है, ड्रामा कल्याणकारी है। किसी को पास्ट के व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हों, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कईयों के साथ, कि पास्ट अच्छा नहीं बीता, उसके संकल्प चलते हैं, उसे भी समाप्त करना हमारे हाथ में होना चाहिए। अपने से बात करेंगे, जो कुछ हो गया वो तो ड्रामा की रील में लिपट गया, अब वो दोबारा 5000 साल के बाद ही होगा, अब मुझे भविष्य की ओर देखना है, पीछे की ओर नहीं। बार बार पीछे मुड़ के देखने वाले कैसे लगते हैं, कोई चल भी रहा हो उधर से डाइनिंग हॉल तक ही आना हो अपने कमरे से और 10 बार पीछे मुड़ के देखें, उन्हें भी कैसा लगेगा और देखने वालों को भी कैसा लगेगा, अपने को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम एक श्रेष्ठ मंजिल के राही है ना, बार बार पीछे देखेंगे तो कदम रुक जाएंगे, इसलिए जो भी पास्ट हो गया, कैसा भी, बहुत बुरा भी वो हो गया, अब हमें भविष्य को सुंदर बनाना है। अब ये संकल्प करके पास्ट के पूरे इम्प्रेशन को, जो व्यर्थ चलता है उसके कारण, उसको समाप्त कर देना है। मैं एक चीज और देखता हूँ आजकल, आज भी एक बहन का फोन आया कि मेरी ये दूसरी बहन है, इसको अचानक बहुत डर लगने लगा है। तो मैंने, तब मैं बिजी था, मैंने कहा इससे मेरी बात कराना, तो मुझे पता चले इसके डर का बीज कहाँ है। तो ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है कि पूर्व जन्मों के या तो पाप कर्म या पूर्व जन्मों की कोई सीरियस घटना, उसका इफेक्ट इमर्ज हो गया है और वो भयभीत कर रहा है। मुख्य रूप से मनुष्य को भयभीत कर रहे हैं कौन, पाप कर्म, और ये भय संसार में बढ़ता ही जाएगा, इससे बहुत व्यर्थ संकल्प चलता है। यानी मन इतना निर्बल हो जाता है डर के कारण कि ये सब बातें भूल जाती हैं कि हम मन के कंट्रोलर हैं, हमारे पास बहुत शक्तियां हैं। तो भय के कारण किसी को व्यर्थ संकल्प चलते हो तो कौन सा अभ्यास करेंगे, एक ही अभ्यास काफी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसे धीरे धीरे भय समाप्त होता जाएगा, वो घटनाएं जो प्रिंट हैं हमारे ब्रेन में वो खत्म होती जाएंगी, डिलीट होती जाएंगी। स्वमान के इस महत्व को सभी बहुत अच्छी तरह समझें। आज हमारी किसी से चर्चा हो रही थी, कई लोगों को पता नहीं चलता कि स्वमान क्या होता है। हमारे अंदर जो संपूर्ण भरा हुआ है ना, पहले 2500 साल का देव युग का एकदम अच्छा अच्छा पॉजिटिव प्योर डिवाइन संस्कार, और द्वापर युग के बाद का भी कुछ अच्छा कुछ बुरा, अच्छा भी तो है ना, एकदम बुरा थोड़ा ही है, बहुत अच्छा भी भरा हुआ है। जिस स्वमान का हम अभ्यास करते हैं उससे जुड़े हुए संस्कार विचार इमर्ज होंगे, तो प्रकट होते रहेंगे हमारे जीवन में, भय खत्म हो जाएगा मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से। इसलिए सभी अटेंशन देंगे किसी भी तरह के व्यर्थ संकल्प। एक और बहुत बड़ी कमजोरी कुछ लोगों में देखने में आती है, किसी किसी में ज्यादा सोचने की आदत, हर बात में ज्यादा सोचना, हर बात में ज्यादा सोचना। मेरे पास एक भाई बाबा है ना, तो उसको बहुत इच्छा मैं भी स्टेज पर जाऊं। अब मुझे फोन करे, मैं तो चला गया था अपने कमरे में, मुझे विदेशियों की लाइन में लगना है, क्या करूं। मैंने उसे बताया भाई उनको रिबन दी हुई है, तुम्हें पकड़ लेंगे, मजा क्या आएगा। अभी बाबा आए, बाबा की मुरली चली, बहुत सुंदर सब कुछ देखा, भगवान को देखा, दो घंटे सामने बैठे, लेकिन एक ही संकल्प ने उसका सारा सुख छीन लिया कि देखा विदेशियों को तो स्टेज पर बुला लिया, हमें नहीं बुलाया। उदास, ये ज्यादा सोचने की आदत कि जो मिला है उसका आनंद नहीं। भगवान को देखा, दो घंटे मुरली सुनी, छोटी बात थी, सबसे बड़ा सुख उसे देखने का, जिसको हम क्षण भर के लिए देखना चाहते थे, दो घंटे तक देख रहे हैं उसको, जिसका एक एक शब्द सुनने की इच्छा रखते थे, उसके महावाक्य सुन रहे हैं बैठकर, उसकी पालना मिल रही है, और एक ही संकल्प ने उसको परेशान कर दिया। कहा बस मैं तो अंतिम बार आया था, अब नहीं आऊंगा। मैंने कहा किसने कहा तुम अंतिम बार आए थे, फिर आ जाना। कहा नहीं, यहाँ हमें कोई पूछता नहीं, हमारी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। तो देखो संकल्प मैं तो तब सोने जा रहा था, मैंने कहा भाई ये मेरे हाथ में नहीं है, विदेशियों को रिबन अलग मिलती है, वही जाते हैं, सभी कहाँ और भारतीय जा रहे हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हैं, फिर आना मिलने बाबा से। तो जो चीज नहीं हो सकती उसको सोच सोच के दुखी होते रहना, जो हो रहा है उसका सुख ही न पाना, इन संकल्पों से भी हम बचेंगे। ठीक है, सभी संकल्प कर ले, अच्छी प्रैक्टिस से अव्यर्थ से मुक्त होना है। ओम शांति।